आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
नमस्कार, SBS हिंदी के न्यूज रूम में आपका स्वागत है। मैं हूं शशि कुमार और प्रस्तुत है 4 नवंबर 2025 के मुख्य समाचार। रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने आधिकारिक ब्याज दर को यथावत रखने का निर्णय लिया है। साथ ही चेतावनी दी है कि 2026 में मकान की कीमतें और किराए बढ़ सकते हैं, क्योंकि मुद्रा स्फीति में अप्रत्याशित उछाल देखी जा रही है। मंगलवार को हुई मौद्रिक नीति बैठक में RBA बोर्ड ने कैश रेट 3.6% पर बनाए रखा, जो अगस्त से अपरिवर्तित है। अधिकांश अर्थशास्त्रियों और बैंकों को भी दरों में बदलाव की उम्मीद नहीं थी। बैंक ने 2025 में 3 बार ब्याज दरों में कटौती की थी, जिससे होम लोन धारकों को राहत मिली, लेकिन इसके साथ मकान की कीमतों में तेज बढ़ोतरी भी हुई। सितंबर में कोर मुद्रास्फीति 3% तक पहुंच गई, जो RBA की वांछित सीमा का ऊपरी स्तर है। इसमें साल 2022 के बाद पहली बार इतनी तेज वृद्धि देखी गई है। RBA के नवीनतम अनुमानों के अनुसार 2026 के मध्य तक मुद्रास्फीति और बढ़कर 3.7% तक पहुंच सकती है। वहीं लिबरल सीनेटर जेन ह्यूम का कहना है कि गठबंधन का एकजुट रहना बेहद जरूरी है। यह बयान उस समय आया है जब कुछ सांसदों ने कहा था कि शून्य उत्सर्जन नीति यानी नेट जीरो पॉलिसी पर मतभेदों के चलते लिबरल और नेशनल पार्टियों के बीच फूट पड़ सकती है। सप्ताहांत में नेशनल पार्टी ने अपनी पार्टी रूम बैठक में नेट जीरो नीति को छोड़ने का फैसला किया था। वहीं लिबरल पार्टी इस महीने के अंत तक अपनी ऊर्जा नीति की समीक्षा पूरी करने की उम्मीद कर रही है। गठबंधन नेता सुसन ले ने बताया कि उन्होंने नेशनल्स के नेता डेविड लिटिल प्राउड से ऊर्जा नीति पर बहुत सौहार्दपूर्ण बातचीत की है और चर्चा जारी रहेगी। दूसरी तरफ न्यू साउथ वेल्स सरकार द्वारा प्रायोजित सिडनी में एक हथियार प्रदर्शनी के बाहर हुए विरोध प्रदर्शन में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सिडनी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में आयोजित इंडो पैसिफिक इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपोजिशन में उद्योग, सरकार और प्रौद्योगिकी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। दंगा निरोधक दस्ते और घुड़सवार पुलिस अधिकारियों की आयोजन स्थल के बाहर प्रदर्शनकारियों के साथ कुछ देर तक झड़प हुई। पैलेस्टाइन एक्शन ग्रुप ने कहा है कि उसका विरोध उन प्रदर्शकों के खिलाफ था जिनमें इजरायली रक्षा कंपनियां राफेल एडवांस सिस्टम्स और एल्विट सिस्टम्स की ऑस्ट्रेलियाई शाखा शामिल है। न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर क्रिस मिंस ने ABC रेडियो को बताया कि प्रदर्शनी में शामिल कंपनियां परमाणु हथियार नहीं बेच रही हैं और राज्य सरकार का उद्देश्य रक्षा निर्यात को बढ़ावा देना है। वहीं होम अफेयर्स मंत्री को ऐसे व्यक्तियों का जिनके खिलाफ वारंट लंबित है उनका वेलफेयर भुगतान रद्द करने की अनुमति देने की योजना की सामाजिक कार्यकर्ताओं और अधिवक्ताओं ने आलोचना की है। यह प्रस्ताव पिछले हफ्ते 29 अक्टूबर को निचले सदन में पेश किए गए सोशल सिक्योरिटी विधेयक में अंतिम समय में जोड़ा गया संशोधन है। नए प्रावधान के तहत किसी व्यक्ति पर अगर गंभीर हिंसक या यौन अपराध का वारंट लंबित है तो उसे ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस या ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन यानी ASIO की सलाह पर उसका वेलफेयर भुगतान रद्द किया जा सकेगा। कई वेलफेयर संगठनों, इंडिजिनस प्रतिनिधियों और नागरिक अधिकार समूहों ने इस संशोधन को हटाने की मांग की है। इंडिपेंडेंट सीनेटर लीडिया थॉर्प का कहना है कि इस प्रस्तावित बदलाव से कमजोर और असुरक्षित लोगों को नुकसान पहुंचने का खतरा है। अंतर्राष्ट्रीय समाचारों में अमेरिकी सरकार ने कहा है कि वह सूडानी सेना और अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्स दोनों के साथ मिलकर संघर्ष विराम स्थापित करने का प्रयास कर रही है। यह बयान उस समय आया है जब RSF लड़ाकों ने 18 महीने की घेराबंदी के बाद पश्चिमी शहर अल फाशेर पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद संघर्ष में खून खराबे में तेजी आई है। सूडान के अधिकारियों ने RSF पर आरोप लगाया है कि कब्जे के बाद से उसने 2000 से अधिक नागरिकों और स्वास्थ्य कर्मियों की हत्या की है। वहीं बचकर निकले लोगों ने हत्या, अत्याचार और यौन हिंसा की कई घटनाओं के बारे में बताया है। अब खबरें भारत से। भारत के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इनमें 9 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। यह प्रक्रिया 4 नवंबर से शुरू होकर 4 दिसंबर तक चलेगी। इसके बाद चुनाव आयोग 9 दिसंबर को नई मतदाता सूची का मसौदा जारी करेगा, जबकि अंतिम सूची 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी। बिहार के बाद यह SIR का दूसरा चरण है। यह पुनरीक्षण उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, छत्तीसगढ़, गोवा, राजस्थान, गुजरात और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप तथा पुडुचेरी में किया जाएगा। इनमें से तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल में अगले साल मार्च से मई के बीच विधानसभा चुनाव निर्धारित हैं, जबकि शेष राज्यों में अगले 2 से 3 वर्षों में चुनाव होने की संभावना है। इसी के साथ 4 नवंबर 2025 के मुख्य समाचार यहीं समाप्त होते हैं।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।